कल मंगलाचरण का पाठ चल रहा था, आज भी हम मंगलाचरण के संबंध में ही पढ़ेंगे। आपने अन्वय सीख लिया है, अन्वय आपने लिख करके भेजा भी था, अच्छा लगा। यत अनादि निधनम अक्षरम ब्रह्म यतः जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते तत् शब्द तत्त्वम्। ये जो है मंगलाचरण का अन्वय है, और इसका सामान्य अर्थ मैंने ये बताया था कि जो अनादि निधन अक्षर ब्रह्म है और जिससे जगत की प्रक्रिया अर्थ रूप में प्रतिभासित होती है, वही शब्द तत्व है। ये सामान्य अर्थ बताया था। आज हम एक एक शब्द को अंदर जा कर के सीखना चाहेंगे और इसका जो रहस्य है उसको भी समझेंगे। इसमें देखिए क्या है कि अनादि निधनम ब्रह्म में अनादि निधनम शब्द जो है, इसका विग्रह क्या करेंगे तो इसका विग्रह होता है पहले द्वंद्व कर लेते हैं। आदिश्च निधनंच इति आदि निधने, द्वंद्व समास। फिर से कहता हूँ, आदिश्च निधनंच इति आदि निधने, और द्वंद्व करने के बाद जब आदि निधने बना लेंगे फिर बहुव्रीहि समास करेंगे। न आदि निधने यस्य तत अनादि निधनम्। एक बार पूरा बोलता हूँ, आदिश्च निधनंच इति आदि निधने, नो आदि निधने यस्य तत अनादि निधनम्। माने जिसका न आदि हो और जिसका न निधन हो, ऐसा जो है उसको हम अनादि निधन कहते हैं। अब यहाँ अनादि निधन में जो आदि शब्द है इसका अर्थ कर लीजिए उत्पत्ति, और निधन शब्द जो है इसका अर्थ कर लीजिए मरण। तो जिसका आदि निधन न हो, अर्थात जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो और जिसका मरण नहीं होता हो, माने जिसका नाश नहीं होता हो, ऐसा जो है तत्व उसी को अनादि निधन कहा गया है। और शब्द तत्व जो है वह अनादि निधन होता है। शब्द तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, ये कोई नहीं बता सकता कि शब्द पैदा कब हुआ। इसी तरह से शब्द तत्व का निधन भी नहीं होता, ये कोई नहीं कह सकता कि शब्द कब जा कर के मरेगा। तो जो न जन्म ले और जो न मरे उसी को अनादि निधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो शब्द तत्व जो, अच्छा इसमें ऐसे आप लोग तो सयाने हैं, समझते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। ये शब्द तो शब्द हुआ, ये शब्द तत्व क्या हुआ, तो घबराना नहीं है। तत्व जो जिसको हम त्व प्रत्यय लगाते हैं ना भाव अर्थ में, तस्य भाव त्व तलौ, तो भाव अर्थ में जो त्व प्रत्यय लगाते हैं उसका भाव अर्थ कर लीजिए या धर्म अर्थ कर लीजिए, तो शब्द का तत्व अर्थात शब्द में रहने वाला जो भाव है, शब्द में रहने वाला जो धर्म है, शब्द में रहने वाला जो गुण है, उसी को कहते हैं शब्द तत्व। उसको हम शब्दत्व भी कह सकते हैं और शब्द तत्व भी कह सकते हैं। तो शब्द में रहने वाला जो गुण धर्म है भाव है उसी को कहते हैं शब्द तत्व, और वह जो शब्द तत्व होता है वह अनादि निधन होता है। उस शब्द तत्व का न आदि है न उस शब्द तत्व का निधन है, अर्थात न शब्द तत्व की उत्पत्ति होती है न ही शब्द तत्व का निधन अर्थात नाश होता है। अब ये जो है ना, इस तरह से अनादि निधनम शब्द तो बताया, लेकिन इससे निकला क्या तात्पर्य, तो इससे तात्पर्य निकला कि शब्द तत्व जो है वह नित्य होता है। आपको अगर पूछा जाए कि नित्य किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि जो जिसका न जन्म हो और न नाश हो वही नित्य होता है। तो अनादि निधनम विशेषण लगा करके भर्तृहरि ने शब्द तत्व को नित्य कहने की कोशिश की है कि शब्द तत्व जो है वह नित्य होता है। ये बात अनादि निधन शब्द से द्योतित होती है, क्लियर। ये हो गया अनादि निधन शब्द के बारे में। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, एक और विशेषण इसमें लगाया है शब्द तत्व में, वो है अक्षरम, कि शब्द तत्व अनादि निधन होता है और अक्षर भी होता है शब्द तत्व। ये अक्षरम का क्या तात्पर्य है, अक्षरम का क्या मतलब है, तो उसको अगर हम समझें तो अक्षरम का आप तो अभी ऐसे समझ रहे होंगे अक्षर मतलब वर्ण, जैसे ओ आ ई ई ये, लेकिन नहीं, ये मत समझिए। अक्षरम का अर्थ यहाँ पर लेना है आपको, अक्षरम माने व्यापकम, जो व्यापक है उसी को अक्षर कहा जाता है। क्या है कि असु व्याप्तौ धातु से सरण प्रत्यय करके, अनादि का सरण, अनादिक सरण प्रत्यय करके अक्षर शब्द की निष्पत्ति होती है। असु व्याप्तौ धातु से अनादिक माने अनादि प्रत्यय है ये सरण प्रत्यय, तो अनादिक सरण प्रत्यय करने से अक्षर शब्द बनता है। तो इस अक्षर शब्द का अर्थ जो है वो होता है व्यापक। तो शब्द तत्व को अनादि निधन कहा, उससे क्या निकला कि शब्द तत्व जो है वह नित्य होता है, और दूसरा विशेषण लगाया अक्षरम, शब्द तत्व अक्षर होता है, अर्थात शब्द तत्व जो है वह व्यापक होता है। अब व्यापक शब्द का मतलब थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा मैं और उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ। व्यापक वो है जो हर जगह रहे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं रहता हो, तो जो हर जगह रहता है उसी को हम व्यापक कहते हैं। जैसे ईश्वर को व्यापक माना गया है क्योंकि ईश्वर जो है वह हर जगह रहता है, ऐसे ही शब्द को भी अक्षर कह करके व्यापक बताया गया है। तो ये अनादि निधन विशेषण का से क्या अर्थ निकला कि शब्द तत्व नित्य होता है, अक्षर विशेषण लगाने से क्या निकला कि शब्द तत्व जो है वह व्यापक होता है। अब इस शब्द तत्व को ब्रह्म भी कहा गया है, तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्म का मतलब है बृंघयति पालयति इति ब्रह्म, जो पालन करता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। पालन का तात्पर्य यहाँ तीनों चीज़ों से है, माने जगत का व्यवहार, जगत की स्थिति और जगत का नियमन करना। तो जगत का व्यवहार, जगत की स्थिति और जगत का नियमन, ये तीनों जो है पालन के की कोटि में आता है। तो जो ये तीनों काम करे, जगत का व्यवहार भी चलावे, जगत की स्थिति भी बनाए रखे और जगत का नियमन भी करे, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब काम ब्रह्म करते कैसे हैं, तो आप देखिए कि इन तीनों कामों के लिए चैतन्य का होना जरूरी है, चेतना का होना जरूरी है। ये मुर्दा जो होता है उसमें सब कुछ तो है ही, आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, लेकिन चैतन्य नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। और जो जिंदा व्यक्ति है उसमें, मुर्दा में और जिंदा व्यक्ति में केवल किस चीज़ का अंतर है, चैतन्य का अंतर है। वह जो चैतन्य है उसी चैतन्य के कारण जो है ये तीनों काम संभव होता है, जगत का व्यवहार भी संभव होता है, जगत की स्थिति भी संभव होती है और जगत का नियमन, कंट्रोल, नियंत्रण वह भी संभव होता है। और ये वह जो चैतन्य है वही तो ब्रह्म होता है, उसी चैतन्य का नाम तो ब्रह्म है। तो ये अच्छा, तो अब शब्द तत्व को ब्रह्म बोला गया, माने ब्रह्म का जो भी फंक्शन है, तीन प्रकार का जो फंक्शन बताया, जगत व्यवहार, जगत स्थिति और जगत का नियंत्रण, ये तीनों फंक्शन जो है वो शब्द तत्व का भी होता है, क्योंकि शब्द के प्रयोग से जगत का व्यवहार भी चलता है, जगत की स्थिति भी रहती है, जगत का नियंत्रण भी होता है। तो इस ब्रह्म विशेषण लगाने से, शब्द तत्व में जो विशेषण लगाया गया उससे ये निकला कि जैसे ब्रह्म होता है, ब्रह्म के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य संपादन शब्द तत्व के द्वारा भी होता है। मतलब ब्रह्म से अभिन्न जो है ये शब्द तत्व है, अभिन्न मतलब जिस जिन दोनों में भेद नहीं होता है ना, जिन दोनों में फर्क नहीं होता, अंतर नहीं होता, उसको हम अभिन्न कहते हैं। तो ब्रह्म में और शब्द तत्व में कोई भेद नहीं है, दोनों जो है वह अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म भी अनादि निधन होता है, शब्द तत्व भी अनादि निधन होता है, ब्रह्म भी अक्षर होता है, शब्द तत्व भी अक्षर होता है, और ब्रह्म जो है वह तीन तरह का काम करता है चैतन्य संपादन के द्वारा, ये भी जो है शब्द तत्व तीन तरह का काम करता है, इसलिए शब्द तत्व को ब्रह्म शब्द से भी कहा गया। अब ये तीन विशेषण लगा करके यहाँ पर शब्द तत्व का परिचय दिया गया। अब इसमें प्रमाण दिया जा रहा है, ये जो यतः जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते, ये जो अंश है मंगलाचरण का, इस अंश के द्वारा शब्द तत्व में प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रमाण किसको कहते हैं? तो प्रमाण कहते हैं कि जिस के ज्ञान से किसी वस्तु का ज्ञान हो उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि शब्द तत्व होता है, शब्द तत्व का अस्तित्व होता है, शब्द तत्व की सत्ता होती है, इसमें क्या प्रमाण है? उसके लिए प्रमाण देते हैं कि यतः जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते, ताकि जिससे माने शब्द तत्व से जगत की प्रक्रिया जो है वह अर्थ रूप से प्रतीत होती है। आप यहाँ जान लीजिए कि जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो तो हो गया शब्द, और शब्द को बोलने से पहले जो मन में जो भाव रहता है, या फिर शब्द को सुनने के बाद जो मन में भाव उत्पन्न होता है, जो एक छवि उभरती है, जैसे अभी आप हमारा शब्द सुन रहे हैं और आपने अगर मुझको देखा हुआ है तो मेरा छवि जो है, स्वरूप जो है, कोई आपको कहे कि बोध कुमार झा, तो तुरंत जो है मेरी छवि आपके सामने आ जाएगी, तो वह जो छवि आएगी वही अर्थ है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि जिस संसार में जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई पड़ता है, जो भी महसूस होता है, वो सब का सब अर्थ है। जिसको आप छूते हैं वह अर्थ है, जिसको देखते हैं वह अर्थ है, जिसको आप समझते हैं वह अर्थ है। तो यह जगत की जो प्रक्रिया जितनी भी है, जगत का प्रोसेस जो है, संसार का जो प्रोसेस है, वह किस रूप से प्रतीत होती है, संसार किस रूप से आपको भासता है, तो अर्थ के रूप से ही भासता है। अब अलमारी है, डेस्क है, टेबल है, पंखा है, दीवाल है, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, ये सब क्या, ये सब अर्थ है। और संसार की प्रक्रिया जो है अर्थ से ही तो चलती है, और यह जो शब्द तत्व है, इसी शब्द तत्व से इस संसार की प्रक्रिया अर्थ रूप में प्रतीत होती है। अगर शब्द तत्व न हो तो इस संसार की प्रक्रिया अर्थ के रूप में प्रतीत नहीं होगी। तो चूंकि संसार की प्रक्रिया अर्थ रूप में प्रतीत होती है, इससे सिद्ध होता है कि शब्द का अस्तित्व होता है, शब्द की सत्ता होती है। अगर तो ये प्रमाण हो गया ना, मैंने बताया था कि जिससे किसी वस्तु की सिद्धि हो, जिससे किसी वस्तु का ज्ञान हो, उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो जगत की प्रक्रिया जो अर्थ के रूप में प्रतीत होती है, इसके कारण से कौन सा तत्व सिद्ध होता है? शब्द तत्व सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ज्ञान होगा वो शब्द के द्वारा होता है। तो शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है, तो आपको अर्थ का ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है कि शब्द तत्व है। समझिए इस चीज को, शब्द से, शब्द के ज्ञान से अर्थ का ज्ञान होता है। क्लियर? तो आपको अगर अर्थ ज्ञान हो रहा है, हम देखते हैं ना संसार में अर्थ तो सब तो अर्थ का प्रयोग करते ही हैं, तो वह जो अर्थ का ज्ञान है उससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि शब्द का भी ज्ञान होता है। शब्द होता है तभी तो अर्थ है, अर्थ का ज्ञान होता है। तो इस तरह से शब्द तत्व में प्रमाण के रूप में ये बात प्रस्तुत की गई कि यतः जगतः प्रक्रिया अर्थभावेन विवर्तते, माने प्रतीयते। अब आप यहाँ पर ये समझिए, ये जो जगत कहा गया है ना, ये कौन सा जगत है? यहाँ जो जगत है ये नाम रूपात्मकम जगत लेना है। नाम रूपात्मकम जगत का मतलब हुआ नाम रूप है आत्मा, जिसका आत्मा माने स्वरूप। तो नाम मतलब हो गया शब्द, और रूप का मतलब हो गया अर्थ। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्रक्रिया जगतो जतः, इसमें जगत शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको लिखना है नाम रूपात्मकम जगत, माने शब्दात्मक जगत और अर्थात्मक जगत। नाम माने शब्द और रूप माने अर्थ, तो शब्द अर्थात्मक जो जगत है वही जगत यहाँ लिया जाता है। और शब्द अर्थात्मक जगत की जो प्रक्रिया चलती है, जो भी उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार से ही शब्द तत्व की सिद्धि होती है। इस तरह से आपने एक एक शब्द का जो है अर्थ समझा। अब थोड़ा सा जो हम इसमें टेक्निकली जो है आपको हम बताना चाहेंगे, लेकिन शायद आज हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का समय जो है हुआ जा रहा है। कोई बात नहीं, तो इस नई बातों को आप स्मरण रखिए, ध्यान रखिए, फिर हम अगले पाठ में आपको बताएं।